سنا والے کو بھی خوبی نہ دیں. بہت سے ہم لوگ ہیں ایکترت رہتے ہیں, ہم یہاں پر بھجن کر رہے ہیں, کنتو جو بھجن کرانے والے گرو ہیں ان سے بھی کپٹتا کر کے کچھ چھپا کر کے رکھتے ہیں. ان سے مت چھپاؤ. دردھن کی میا گندھاری کی نا کہ بیٹا میں یہ نہیں کہوں کہ تمہاری جیت ہو جائے, میں اپنے منہ سے نہیں کہوں, کنتو تم کو جیت یوگیہ بنا دوں گی کہ تمہاری جیت ہو جائے, تم ہارے گا نہیں. دردھن نے کہا میا تم ہم کو بڑھ دے دے, تم کہاں دے گے تمہاری جیت ہو جائے. ان کا جاننا یہ میں نہیں کہوں گا, کنتو تم کو جیسا کہہ رہا تم ایسا کرو تمہاری جیت ہو جائے, جب کرے گا تو جیت ہوگی, نہیں کرے گا نہیں. کہ کیا کروں, تم ننگے ایک دم ہمارے سامنے آ جاؤ, ایک دم بالکل ننگے. اچھا ٹھیک ہے, یہ کون سا بڑی بات. تو وہ جس گھر میں تھی کمرے میں وہ گیا کپڑا پڑا کھول کر کے ایک دم ننگا آیا, کنتو میا کے سامنے اب تو بڑا ہو گیا نا, اس لیے یہاں پر ڈھک لیا, اور تو سب ایسا رہا. ارے رے کیا کر دیا تم, ہمارا بیٹا ہمارے گھر سے نکلا, تم ہم سے لجا کر رہا, یہ یہاں پر ڈھک لیا, یہاں یہ تو بات خراب ہو, اب یہیں سے تم جدھ میں یہیں پر تم کو چوٹ لگے گی یا یہیں سے تمہارا سنا ملے گی. اس لیے بھیم نے گدا کہا ہمارا مارا جس کو وہ چھپایا تھا جو وجر نہیں ہو سکا, اور باقی شریر تمبیا سے گرو سے اور پتا سے جب کوئی بات چھپائے وشیش کر کے گرو سے چھپائے گا نا تو کیا ہوگا, وہی اسے گرو بچوں کے ساتھ میں جس کے ہم یہاں پر وشواس کر کے آئے ہیں گھر چھوڑ کر کے سب, اور اسی کو وشواس نہیں کیا, کہاں گیا تھا. تو جب گیا ہے سورت تو کہے گا کہ میں پشچم گیا تھا, کوئی بات سیدھے بات نہیں کرے. آج کیا کیا بیچا ہوئی, آج کیا کیا بات تمہارے اندر میں آئی, کچھ نہیں. تو گرو جی جھاڑو دے کر کے نکالیں گے, کنتا جا کر یہ چاہتا ہے یہ سب آوارجنا جتنی گندگی ہے ہمارے ہدر سب رہے, اس سے ہمارا کیا ریسی کا بگڑے گا. سرنگ پورا ہوا نہیں, اس لیے مہاپرو چاہتے ہیں کہ آج جتنی بھی گندگیاں ہیں ہردے میں سب نت کپٹ ہو کر کے اس کو اچھی طرح سے جھاڑ, جو نہیں نکلے اس کو کپڑے سے مہاپرو کیا کر رہے ہیں, اور رگڑ رگڑ کر کے جو ساتھی جی بیٹھیں گے نا, جب تک ایک بھی داغ رہے گا تنک بھی درگندھ رہے گی تو مکھی بیٹھے گی کہ نہیں. ابھی کوئی آم یا کٹہل لے آؤ اور یہاں پر رکھ دو پھاڑ کر کے, کنویں کو الگ کر کے, تو کیا ہوگا, مچھیوں سے ایک دم چاروں طرف سے سر ایسی گندگی رہے گی تو مکھی آئے, مکھی مانے اپرادھ انرتھ سے یہ سب آئیں, اس لیے سب کو اچھی طرح سے دھو دھا کر پہلے جھاڑو سے نکال کر کے بڑے بڑے کو پھینکیے, اس کے بعد میں پھر دھوئیے پھر صاف کیجیے, اس کے بعد میں دو تین بار صاف ہو جانے کے بعد میں پانی سے دے کر کے چھوٹے چھوٹے کو بھی ہٹائیے بھولی اتیادی سب کو, اور جب اس سے بھی کچھ رہ گیا تو کپڑے سے ماسک دھو کر کے صاف کر کے دوسرے دن کل ہم لوگ جگن ناتھ بلدیو سبھدرا جی کو. کنتو ایک بات ہے, ایک جگت سمت بھاگوت میں لکھا ہے کرشن پونیہ سمن کیرتن ہردیم تسو کیا شریمتان سوگتا کرشن پونیہ سمن کیرتن. بھگوان کی ہری کتھاؤں کو جب ہم سنیں گے نا, کیسے سنیں گے, آنکھ بند کر کے جیسے ہم سو رہے ہیں ایسے نہیں, سوتے ہوئے نہیں سننا چاہیے, کس روپ میں سننا چاہیے, مانو امرت جیسے پیتے ہیں پیتے ہوئے میں اس کو کروں گا, جو سن رہا ہوں آج بھی کروں گا, آج سے سنا جو کرودھ نہیں کرنا ہے, اب آج سے کرودھ نہیں, آج سے کسی سے ہم ستوتا نہیں رکھیں گے تو آج سے ہی ستوتا نہیں رکھیں گے, आज से किसी के प्रति वही में मनन से इत्यादि नहीं रखें, तो आज से आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, आज से अपना हृदय में छिपा करके कोई गंदी चीज नहीं, आज ही से करना है, तो आज ही से करो। ऐसे श्रद्धा पूर्वक सुनने गए यदि कोई, तो कृष्ण क्या करते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन है, सुनने वाले को हृदय को पवित्र बना देने वाले, हृदय में प्रवेश कर जाएंगे कथा के माध्यम से और उसको अपने आप साफ करके अपने आप है। ये पद्धति सबसे अच्छी है। झाड़ू से साफ करेंगे, मैं क्रोध नहीं करूंगा इससे नहीं होगा, क्या तात्पर्य इसका हुआ, अपने प्रयत्न से अपना हृदय साफ करने से नहीं होगा, इसका एक है उपाय क्या है, यदि भगवान की कथाओं को बड़े प्रेम के साथ में इसको करने के लिए सुनेंगे तो सुश्रु होकर के, सुश्रु भी कृति भी
यत्नपरायण
होकर के, मैं आज से क्रोध नहीं करना है, मुझे आज से सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, जो कुछ होता है हमारे पूर्व कर्मों के पाप के वजह से ये सब हो रहा है, उसमें दूसरे किसी का कोई दोष नहीं है, युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं दुर्योधन का दोष नहीं है, इसका नाम क्या है, दुर्योधन, दुर्योधन नहीं, भीम कहते थे दुर्योधन और ये कहते थे सुयोधन, इसलिए उनको सुयोधन ने इसका दोष नहीं है, ये दोष हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का है कि ये सब चीजें उपस्थित हो रही, लड़ाई भी हमको नहीं करनी थी, ये तो कृष्ण का आदेश पालन कर रहे हैं, इसलिए नहीं तो हम लड़ाई ही नहीं करते, इसलिए ऐसा सोच करके काम क्रोध लोभ मद गुम्मा सज्ज क्रोध इत्यादि अनर्थ अपराध सब दूर करके भगवान को बैठाएंगे, तो ये कथा के माध्यम से होगा, हरि कथा ही हमारा झाड़ू है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया, गांव गांव में
नाम
भट्टा लगा, उसमें झाड़ूदार बने, माने क्या, कीर्तन का पार्टी बनाया, कीर्तन सुनो, कीर्तन दो प्रकार का, एक भगवान की लीला कथाएं रुकी और एक मृदंग ताल सुर के साथ, साधारण लोग आदमी जब सुर होगा और कीर्तन की ध्वनि उसमें रहेगी, गला मधुर होगा तो सब जितने लोग हैं सब सुनेंगे, और मोटे स्वर से यदि हरि कथा आप कह रहे हैं कोई नहीं सुनेगा, तड़प भड़प चाहिए, कोई चीज अच्छी है, नीम की पत्ती ठीक है खाने के लिए, रोग दूर होगा, फिर तो कोई खाएगा ऐसे नहीं खाएगा, उसमें थोड़ा सा घी में भून दो, नमक लगा दो थोड़ा और चावल के साथ में उसको खाओ तो देखो रुचिकर हो जाएगा। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन को चटपटा कर करके गांव गांव में उन्होंने मंडल स्थापन किए और कीर्तन का प्रचार किया और उसके माध्यम से हरि कथा भागवत लेकर के भागवत भवन उन्होंने बनाया जहां भी गए और वहीं पर भागवत की कथा हुई। इस तरह से हृदय साफ होगा, हम लोग भी यही करेंगे, बड़े प्रेम के साथ में हरि कथाओं का श्रवण के माध्यम से हृदय को पवित्र बनाने की चेष्टा करें, तब तो होगा, और नहीं तो जन्म भर भी जैसा अभी भजन कर रहे हैं काम क्रोध अपराध को साथ में लेकर के भगवान का भजन नहीं, आंख से आंसू नहीं आए, हृदय द्रवित नहीं, इसलिए सब कपटता छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके एकांतिक रूप से गुरु वैष्णव के अनुगत में भगवान के प्रति शरणागत होकर के ये करेंगे, तब तक ये मंदिर का आज यही तक रहे, शाम को हम लोग इसके विषय में हम और कुछ बतलाएंगे, कल शाम को भी वहाँ पर घूमने तो सब लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे कृष्ण के साथ में और ये झाड़ू लगाने का कार्य करें, ऊपर से झाड़ू लगाने का कार्य बहुत सीधा साधा है, कोई भी इसमें कठिनता नहीं है, झाड़ू उठाया झाड़ू दे दिया, मूर्ख आदमी भी ऐसा कर सकता है, किंतु बड़े बड़े सिद्ध मुनियों के लिए भी साधकों के लिए भी मंदिर में आता हृदय में झाड़ू लगाना जो चैतन्य महाप्रभु को अभिष्ट है वो करना बड़ा भारी कठिन है। वो तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे प्रभुपाद जैसे गुरु वर्ग जैसे लोगों के लिए ये संभव है। पहले यह काम चलता था नौकरों के द्वारा कराया जाता था, राजा नौकरों के द्वारा कराते थे। महाप्रभु जी ने कहा ये नौकरों से ये पूजा नहीं होती, घर साफ नहीं होता, इसलिए हम अपने भक्तों को ले चलेंगे और भक्तों के द्वारा यह काम कराएंगे और भक्तों को सिखलाएंगे कि कैसे अपना हृदय साफ किया जाए। मंदिर तो सब समय साफ है, उसको साफ नहीं करना है, यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं। साफ करना है क्या? अपना हृदय साफ करना है। तो कैसे ये साफ होगा? आज सवेरे थोड़ा सा इस पर हमने दृष्टि बात किया, थोड़ा सा बतलाया, अपने लिए भी दूसरों के लिए। तुम लोग कुछ कहोगे तब फिर हम कहें, नहीं तो बोलते बोलते तो काफी। प्रेमानंद जी थोड़ा सा बोलो। यदि कोई शुद्ध वैष्णव है वो कोई अपना इंद्रिय तर्पण नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर जो उपस्थित भक्त हैं वो अपना इंद्रिय तर्पण चाहे हिंदी में बोलो चाहे बंगला में, वो इंद्रिय तर्पण नहीं चाहते, बल्कि वो कृष्ण का इंद्रिय तर्पण कैसे करेंगे इसलिए हिंदी भाषा में या बंगला भाषा में या किसी भाषा में सुनना चाहते, इसलिए उनके ऊपर में ये प्रयोजन नहीं करते। आज आप लोगों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के शुभ दिन अपने प्रिय पार्षदों को संग में लेकर और गुंडीचा मंदिर में जाकर के उत्सव मारे, और बाई चांस आज ही के दिन में श्री भक्ति विनोद ठाकुर के महाप्रभु के प्रिय परकर तिरोभा और गदाधर पंडित जी का उनका भी तिरोभा उनका भी तिरोभाव। चैतन्य महाप्रभु देखो कितनी बड़ी बड़ी सहज कामों में ही महाप्रभु जी के और उनके भक्तों की शिक्षाएं साधारण से साधारण। झाड़ू लगाना देखो जैसे कितना बड़ा एक महत्कार, किनके लिए? कुछ दिन पहले ही चैतन्य महाप्रभु दक्षिण प्रदेश में है गोदावरी के तट पर रामानंद से थे और उन्होंने महारसराज महाभाव को प्रदर्शन, जिसे रामानंद जैसे व्यक्ति भी उनके चरणों में लूट गए और दर्शन दर्शक के प्रकृति गो के प्राप्त हो। और उन दोनों के संवाद में ऐसी कथा हुई जो विश्व के लिए नई थी, वहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी ने जगत के जीवों पर कृपा करना और रसा पालन करना दोनों कोई अनर्थिक चरण की रात वाला आराधा भाव राधा या प्रणय महिमा इन दोनों को अथा तो राधा भाव का आस्वादन आरंभ किया और जगत में प्रेम दान था। कहां रस राज भाव महाभाव दिखलाया, अंतिम तूफान उठाया कहां से? वर्णाश्रम और लेकर के कहां चले गए? सतान प्रसन्नम वृंद्य संकीर्तन में जाकर कर्म ज्ञान इत्यादि सबको छोड़कर के भगवान की कथाओं से ही आरंभ किया। तो महापुरुष ने कहा वहां लेकर के और वहां से शांत दास्य सख्य वात्सल्य और अंत में मधुर मधुर सभी महाप्रभु जी की तृप्ति नहीं हुई, उससे ऊपर में बढ़ गए गोपी भाव गया है। महाप्रभु जी तृप्त होकर के भी और भी उनको तृष्णा देगी और कहो राधा भाव दे गए, अभी और कुछ बाकी है तो और कहो। तो उन्होंने यही विमान किया, इसके बाद में और कोई प्रश्न करना है इसके बाद में तुम कहो, विश्व में आज तक फायदा नहीं है। ये तो आप ही है जो आप ऐसा हो। तब उन्होंने एक रथ राजमा भाव को बताया और वहां से लौट करके जब पूरी आए तो ये रथ यात्रा का प्रसंग है। और उसी समय में जैसे कि झाड़ू लगा रहे, झाड़ू ले लिया, घड़ा ले लिया और अपने परिचयों को देकर के कहां उत्तम भाव जो वेद शास्त्रों का निगूर से निगूर तत्व वेद शास्त्रों में भी इसका वर्णन नहीं किया गया और कहां श्रीमद् भागवत में भी इस चीज को वर्णन किया और यहां पर चैतन्य महाप्रभु वही चैतन्य महाप्रभु अब आकर के पुरी में झाड़ू लेकर के मंदिर मंदिर होना यथार्थ में उनका ये नहीं था अभिप्राय। उनका अभिप्राय क्या था? लोग भक्त तो होते हैं, कुछ भजन भी करते हैं, नौकरों चाकरों को तो छोड़ दो, उनसे भक्ति का कोई संबंध ही नहीं है, वो लोग क्या मंदिर इत्यादि को जो धोते हैं, जो सेवा करते हैं मंदिर में, उनके अंदर भी कितनी तरह की आवर्जनाएं गंदगी है, ये चीज उनको उनके द्वारा धुलवाना भक्तों को क्यों लगे। और उनको कह रहे हैं जैसे देखो ऐसे झाड़ू कितना ये सुंदर झाड़ू दे रहा है, मिट्टी भत्ना कर रहे हैं, झाड़ू नहीं दे रहा है, वो इधर देख रहा है उधर देख रहा है और झाड़ू नहीं, तो उसको मिट्टी भत्ना दे, देखो तो कितना सुंदर ये कितना ये झाड़ू दिया, कुछ भी नहीं झाड़ू, वो लज्जित होकर के फिर अपने काम में तत्पर हो जाए। और फिर जो करता है उसके लिए देखो ऐसा करना चाहिए सब, इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं और दूसरों से भी कर रहे हैं। मंदिर होना मैंने अपना हृदय इसलिए केवल दीक्षा से बाहरी दीक्षा लेने से ही नहीं हो जाए, तिलक माला इत्यादि धारण करने से भी नहीं होगा, ये कैसे होगा यदि गुरु वैष्णव के आदर्शों को लेकर के हम अपने हृदय को शोधन कर परिमार्जित करें। सबसे पहले वह अन्याभिलास, अन्याभिलास को ज्ञान कर्म के प्रयास के रूप और अनुकूल रूप में कृष्ण के समस्त प्रीति के लिए अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करें, तब तो वो इसलिए यही सब चीजें हमने सवेरे भी बतलाया था जो हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य इत्यादि है इसको हटाना है। हम धन दे सकते हैं घर में किंतु हृदय से झाड़ी से कैसे इन भावों को दूर करेंगे, अपराध अनर्थ ये जरा कठिन है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी को नाम पर सदा झाड़ूदार करते हैं, उन लोगों के गुरु बात ये सब झाड़ूदार, झाड़ूदार होना बहुत नीचा काम नहीं है, मात्र उसी झाड़ू के द्वारा ही प्रताप रुद्र राजा पद प्रसन्न हुए, इसलिए झाड़ू लेकर के वहां जाकर के दे रहे हैं। पहले झाड़ू दिया, झाड़ू ले रहे हैं दे रहे हैं, खड़ा ले रहे हैं, खाली खड़ा लौटा रहे हैं, भरा हुआ खड़ा ले आ रहे हैं, संकेत किस चीज का है? कृष्ण नाम, कृष्ण कृष्ण के अपेक्षा और कुछ नहीं, लेने के समय कृष्ण, देने के समय में कृष्ण, झाड़ू देने के समय भी कृष्ण, सब समय कृष्ण ही कृष्ण है, ये झाड़ू देने का तरीका है। ऐसे करने से ही हृदय की ये जितनी भी वासनाएं और यह अनर्थ है उसमें प्रवेश करने को उसको समय नहीं, इसलिए सब कामों में सब समय अपने घर में भी ऐसा ही करना, उसको अवकाश नहीं है क्रोध होने का, उसको अवकाश नहीं है कुछ कामना वासना करने का, वैष्णों से की निंदा करने का, गुरु की अवज्ञा करने का, परिणाम में अर्थवाद की कल्पना की और देह में आत्मविमान की कोई भी उसको अवकाश नहीं, जैसे निरंतर सब समय कृष्ण इसलिए महाप्रभु की पहले यही शिक्षा है, झाड़ू दो अनर्थ को दूर करने के लिए और कुछ प्रयास नहीं, हरि कथा श्रवण और ऐसे ही कृष्ण कृष्ण कीर्तन के द्वारा ही ये सब हृदय, इसलिए बतलाया शिक्षा करने महाप्रभु जी ने कृष्ण नाम परम विजय से श्री कृष्ण सामिल, परम विजय से यही श्री कृष्ण नाम इसी के द्वारा सब होगा, इसलिए कृष्ण कृष्ण कहना और वैष्णवों की मुख से भगवान की कथाओं को सुनने से हम आज ये कर सकते हैं। किंतु हाँ, ये सुनने से नहीं होगा, उसके साथ में प्रयास करना होगा। चैतन्य महाप्रभु जी झाड़ू लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं, ये प्रयास है। किंतु साथ साथ में कृष्ण नाम कीर्तन इत्यादि गुरु के साथ में लगा हुआ है, इधर दोनों काम एक साथ में चलना चाहिए। ये सब झाड़ू देने का तरीका है। संसार में भी रहिए, घर में रहें या बाहर में रहिए, मंदिर में रहिए, किंतु इसी प्रकार से अपना आचरण करना हो। कभी झाड़ू बनाया हुआ है, हमारे गुरु वर्गो ने बनाया, महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को आदेश दिए झाड़ू बनाओ, और झाड़ू बना करके भक्तों को दिए, तो उन्होंने एक झाड़ू बनाया। वो झाड़ू क्या है?
मनसिक्षा
है, उपदेश, वही था। उसमें दो चार और सीखे जोड़ दी, देखा जो पतला हो गया है तो उसको और जोड़ दिया। किसने? राज गोस्वामी ने मनसिक्षा के पर। यदि हृदय को निर्मल करना है तो दोनों ग्रंथों को जरूर प्रारंभ में पढ़ करके वैसा बनाओ, और यदि नहीं बना सकेगा वो झाड़ू का व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने इन दोनों झाड़ियों को एकत्र करके और जगत के हृदय में, इसे चैतन्य महाप्रभु मंदिर साफ करने के लिए नहीं, बल्कि हृदय मंदिर साफ, भक्तों का मंदिर हृदय मंदिर साफ कराने के लिए उसने एक घटना घटी। घटना घटी, एक कोई पूजा भक्त है और वो घरे में पानी ला रहा है, देखा जो बड़ा सुंदर मौका है, महाप्रभु कभी मिलते ही नहीं है और उनका चरण तो कभी मिलता नहीं, और ये अपने को छिपा कर रखते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण चंद्र है, सुन रखा था स्वरूप दामोदर राय रामानंद इत्यादि से, इसलिए सोचा कि कभी मौका नहीं मिलता है, आज अच्छा मौका मिला है। बस सबके सामने मंदिर में ही खड़े हुए महाप्रभु जी सो रहे हैं और उनके चरणों में उसने सुझे दिया कि तो महाप्रभु जी से रख गए, बड़े क्रोधित हुए और जाकर के रहा उनसे स्वरूप दामोदर जी से, तुम्हारा गुड़िया भक्त गौरिया
देखो व्यवहार,
आज देखो तो इसका व्यवहार, आज हमारा इतना अपमान किया और हमारी दुर्गति की, दुर्गति क्या हम इस दुर्गति को नहीं समझते हैं, ये समझना ही वैष्णव होता है, महाप्रभु जी की कृपा है। दुर्गति क्या है? हम थोड़ा सा भजन कर लें, और यदि ठाकुर जी के सामने में अपने गुरु वर्गों के सामने में भी यदि हम अपनी प्रतिष्ठा लेते हैं तो ये सबसे बड़ी दुर्गति। ये क्या हुआ? वैष्णव अपराध हो जाएगा, भगवत अपराध हो जाएगा। उसने तो वो विचार नहीं किया, ये जगत को शिक्षा देने के लिए जगत गुरु के रूप में आए हैं, इसलिए इन्होंने एक छोटे से बात, छोटी सी बात नहीं, उसको विचार करके देखा। हमारे बाद में आने वाली पीढ़ियों में ये भयंकर रूप से रूप बढ़ जाएगा और सब लोग अपने भ्रष्ट, अपने विचारों से भ्रष्ट होकर के चले जाएंगे, भक्ति जहन्नम में उनकी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने देखा कि अभी रोक देना चाहिए, इसलिए स्वरूप दामोदर देखा, स्वरूप दामोदर जी इस चीज को समझे। उन्होंने देखा जैसे इसने किया तो है बात तो वहां थी, इसमें से कोई भी गलती नहीं है, किंतु श्रद्धा उसमें सामाजिक रूप में ये बात ठीक नहीं। महाप्रभु जी के लिए तो ठीक है, किंतु साधारण लोगों के लिए ठीक नहीं है। यहां तक कि साधारण रूप में हम लोग जो गुरु बनने वाले हैं, साधारण अधिकारी, और अपने को गुरु मान करके ऐसा यदि कराए, उनका भी सर्वनाश होना और इसे ठाकुर जी के मंदिर में उन्नत वैष्णवों के सामने में कोई भी प्रतिष्ठा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि उन अधिकारी नहीं जानता है, वो तो करेगा, देखेंगे जब और अच्छा है करने लग जाएंगे। वो अच्छे अच्छे विषयों में भी जहां पर गंभीर होना चाहिए गंभीर न होकर के क्या करेंगे, यही मनोविरोध करते। गुंडिचा मंदिर एक बहुत गंभीर विषय है, और उसमें सभी लोग आए और जिसको अपना पूज्य समझते हैं उनके चरणों में पानी देने लगे और वो हल ला कर रहे हैं, बड़ा आनंद कर रहे हैं। वाह वाह वाह। तो ये मनोविनोद एक रिक्रिएशन हो जाए, इसलिए इसको साधारण मनोविनोद के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है, इसलिए भक्ति धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि हमारी दुर्गति इसने की। कैसे दुर्गति? हमारा लोग परलोक सब कुछ बिगाड़ दिया, ठाकुर जी के मंदिर के सामने में मैं उसकी प्रतिष्ठा को ले रहा हूँ, चरण धुलवा रहा हूँ और सभी लोग पानी लेकर के पूर्व से पी रहे हैं। ये मेरा सपना, उसका तो जो कुछ हुआ वो नहीं हुआ, किंतु हमारी दुर्गति है। इसलिए महाप्रभु जी पहले तो मना किया, तभी नहीं माना तभी दे दिया। महाप्रभु जी ने गंभीर रूप में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, भविष्य के लिए पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, नहीं समझें। इसलिए इस छोटे से एक अपराध और था, छोटा हरिदास ठाकुर हरिदास, कोई इसमें दोष नहीं किया, उसका कोई भी दोष नहीं था, किंतु अपने परिकरों के द्वारा ही दूसरों को शिक्षा देते हैं। वो एक बूढ़ी औरत से महाप्रभु जी की सेवा के लिए कुछ चावल मांगने के लिए लाया। महाप्रभु जी का जाए कौन मांग करके लाया? छोटा हरिदास मांग करके बोला, अच्छा क्यों गया? औरतों से बातचीत करने के लिए जाओ, आज से जीवन में कभी भी तुम हमारे पास में नहीं आना, मना कर दिया। गोविंद भाई मत कभी ना काम कर, मैं सम्मुख दर्शन नहीं करना, ये बैरागी हो जा कर विषय यदि महाप्रभु ने ऐसा किया, ये बात ठीक है, ऐसा करना उनका उचित हुआ, हम उनसे सीखा। किंतु हम लोग के प्रभुपाद जी थे ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु, बड़े बड़े आदमी, उनके समय में एक ऐसा ही उनका सेवक था, वो कुछ गड़बड़ काम किया, इससे संभाषण इत्यादि जैसा उसको भगवान से निकाला नहीं, बल्कि वो इतना प्रभावशाली व्यक्ति था, हमने उसको उनको देखा है, बड़े नामी यशस्वी, किंतु इस विषय में उनकी कुछ कमजोरी दुर्बलता। तो प्रभुपाद जी को वो सोने के ग्लास में किसी ने दे दिया कोई शरबत, तो उन्होंने थोड़ा सा लगा करके उसकी गति को दिया, किंतु ये नहीं कहा जैसे तुम यहां से निकल जाओ। क्यों नहीं कहा? महाप्रभु जी ने तो शिक्षा के लिए दिया, किंतु ये लोग नहीं सुना करते, ये लोग उनको रक्षा करते हैं। देखा जैसे कि भगवान का विरोधी नहीं है, भले कुछ आग अभिहार अभिलाषा, इसे उसको क्षमा करना नहीं, ये महाबदलता है। प्रभुपाद जी को ऐसी की बात, इसलिए ये लोग भजन करके उसको सुधार सकते हैं, किंतु महाप्रभु अपने स्थान पर ठीक है, ये अपने स्थान पर। इसलिए हम लोगों को आज के दिन में सुंदर रूप से झाड़ू देकर के अपने इन सब दुर्गुणों को निकालना चाहिए, भगवान के भक्ति के लिए, भगवान को हृदय में लाने के लिए इसके लिए यथेष्ट चेष्टा करनी पड़ेगी। इधर में झाड़ू भी देंगे और कृष्ण नाम भी करेंगे, साथ में पानी से धोएंगे भी, हरि कथा श्रवण करेंगे। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा तीन उपायों के द्वारा हम लोग मंदिर मांग रहे हैं, तभी फिर ये शुद्ध रूप से हम भगवान की सेवा में अधिकार पाएंगे। इसलिए इस भूमि का मंदिर मार्जन का ये एक उद्देश्य है। दूसरी बात, वहां पर मंदिर मार्जन के बाद में भक्त लोग का प्रसाद पाया, महाप्रभु जी ने अपने हाथ से प्रवेशन करना आरंभ किया, किंतु उन लोगों ने सबको प्रवेशन कर दिया, बैठा तो दिया किंतु किसी ने हाथ में उठाया खाया नहीं। सर दामोदर जी ने कहा जैसे ये कोई भी नहीं पाएंगे, इसलिए आप कृपा करके बैठ जाइए, बैठने के बाद में हम लोग प्रवेशन करेंगे और जब आप पाने लगेंगे तभी पाएंगे। तब फिर महा उन लोगों ने चार पांच आदमी लोग पानीनाथ और कौन कौन ये सब प्रवेशन करने लगे और महाप्रभु बैठे। थोड़ी देर के बाद में नित्यानंद प्रभु जी से और अद्वैताचार्य में विवाद लगे, विशेष करके जब वहां पर जल में स्नान करने गए नरेंद्र सरोवर में, वहां भक्तों की ये प्रेम का विनोद भी इसमें बहुत बड़ी सत्शिक्षाएं होती हैं। साधारण आदमी इन चीजों को नहीं समझ सकता। परस्पर विनोद के द्वारा कुछ इधर उधर कर रहे हैं, लड़ाई जाए, झगड़ा जैसा, बात भी बात जैसा, और उसमें बड़े बड़े सिद्धांत दिखला रहे हैं। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी ने अपना जूठा फेंक दिया, चारों तरफ में छिट दिया, वो उसका एक कण आ गया द्वैताचार्य के पत्ते में। मैंने कहा से ये भ्रष्ट आ गया सन्यासी अवधूत, और एक जूठा फेंक दिया हमारा सब अपवित्र। अब नित्यानंद प्रभु, अरे इतना विद्वान होकर के, इतना जानने का नाम होकर देहात में बुद्धि तुम्हारी बनी रही, तुम नहीं जानता कि महाप्रसाद बड़ा पवित्र है, कभी अपवित्र ही नहीं होता, और इससे तुम अपवित्र हो गया और तुम्हारा भोजन अपवित्र हो गया। इसी तरह से उनका परस्पर झगड़ा करना भी बात भी वैष्णव की शिक्षा का विषय होता है। झगड़ा ऊपर से देख रहे हैं ये नहीं, भीतर से देखो इसी सिद्धांत के लिए ये सब परस्पर वार्तालाप या ये झगड़ा कर रहे हैं। इसी तरह से उनका सब चरित्र है, इसका विस्तार में वर्णन किया गया है। आज रात अधिक हो गई, इसलिए यही संक्षेप में हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग 5:30 बजे आप सभी लोग आ जाएंगे चर्चा के बाद में सामने, उसको अन अवसर काल का न अवसर काल, दर्शन करने का अवसर न होने से अन अवसर उसको का। वो क्यों? परमार्थिक भावना रखते हुए भी ठाकुर जी का प्रतिदिन प्रति वत्सर एक नया नया रंग होना चाहिए, उसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नव कल्यवर नहीं होता, 12 वर्ष के बाद में उसको होते हैं अंगरा। ठाकुर जी का प्रति वर्ष अंगराग होना चाहिए। जैसे आदमी स्नान करता है, केशों को सवार लेता है और अंगों को प्रतिष्ठा कर लेता है, अक्सर सुसन कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह से ठाकुर जी को प्रति वर्ष अंगराग देता है। तो उसके लिए अनवसर काल किया गया है, उसमें अनुभक्तों को दर्शन नहीं देते हैं, उनका ये 11, 12, 15 दिन तक उनका अंगों का श्रृंगार किया जाए। स्नान करने के बाद में वो कुछ गड़बड़ हो जाए, उसी को धार्मिक भावना देकर के उसको अनवसर, कि ठाकुर जी बीमार हो गए हैं, उनको बदहजम हो गई है, उसमें दर्शन नहीं दे सकते, उनको चूर्ण और हजमी जल गिरा, पानी गिरा जो जल गिरा उनको खिलाया। इसके बाद वो कहते हैं जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई, अब घर में मेरा मन नहीं लगता है, मैं बगीचे में टहल ले जाऊँ। लक्ष्मी जैसे इसका मन तो खराब हो गया है, अभी मन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं भी चलूँ, उन्होंने कहा कि नहीं तुम मत जाओ, मैं अकेले जाऊँ। उनको सब हुआ ये कहीं ने वृंदावन में चला गया, इसलिए कहा इसे सब अकेले कैसे जाएंगे, अपनी बहन को और अपने बड़े भैया को साथ ले जाएंगे। कहीं हाँ जी मंदिर बड़े भाई बलदेव जी को और छोटी बहन सुभद्रा जी को साथ ले करके अपने बगीचे में टहलने के बहाने में चलते 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 वो वृंदावन में पहुंच गए। मैया के पास में बलदेव और सुभद्रा जी को बातचीत करने के लिए बैठा करके और बहाना बना करके चले गए गोपियों से मिले। अब वो 4 दिन 5 दिन हो गए नहीं लौटे। अब वो खूब विचार करके देखने लगी कि कहाँ है, कहाँ गए, लौटा क्या, कहीं मन लगा लिया हो। मन लगाने में तेज है, इसलिए उसको खोजने के लिए गए। इसको कहते हैं हेरा पंचमी, हेरना में देखने के लिए कहाँ गया, समझ गई वो ठिकाना की जानती थी कि यहीं पर हो, इसलिए संदेह के वजह से वहीं पर गई जहाँ पर भी वो रह सकते हैं। ठीक है, एकदम ब्रज में पहुंच गए। और वहां पहुंच करके उनको देखा नहीं। सबसे पहले क्रोधित होकर के रथ को तोड़ा और रथ को तोड़ने के बाद में फिर खोदने लगी, उनके दरवाजे तोड़ने लगे। इसके बाद में गोपियों को पकड़ करके उनको मारा पीटा और उनको कहा जल्दी चला दो। उन्होंने कहा जाते हम लोग दो चार दिन में उनको आज भी हम लोग भेज। इसके बाद में फिर 9 दिन के बाद में वहां से लौट। श्रद्धालु से पहले ये भी भावना नहीं करते तो ठाकुर जी का मंदिर कुछ दिन प्रतिष्ठा हुई इसलिए वहां से गुंडलिका मंदिर जाएंगे, वहां से लौट सकते हैं। किंतु इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु जी की ये भावना सबसे काम है। भावना क्या है? कृष्ण चले गए हैं वृंदावन से मथुरा कंस को मारने के और वहां से कंस को मारने के बाद में उनके पिताजी ने चलाती चतुराई से उनमें संस्कार जगाना चाहा मथुरा। मथुरा संस्कार कैसे जगेगा? जो बचपन से लेकर के 10 वर्ष तक नंद मेरे पिताजी ने यशोदा मेरी मैया है मैं गोप हूँ ये जो उनकी भावना बनी है इसको वसुदेव जी हटाना चाहते इस संस्कार और उसके बदले में क्षत्रिय अभिनय क्षत्रिय वेश क्षत्रिय स्वभाव ये देखना चाहते हैं। इसलिए उसको कृष्ण और बलदेव जी को कंस के मारने के कुछ दिन बाद ही ने भेज दिया बहुत दूर जब वृंदावन न जा सके वृंदावन के किसी लोग से भेज संस्कार को उधर का संस्कार मिटाकर और इधर का संस्कार पैदा करने के लिए। इसके बाद में कृष्ण वहां से आए गुरुकुल से आए तब तक उसका आक्रमण हो चुका था। प्रतिवर्ष आक्रमण हो रहे हैं 18 वर्ष तक आक्रमण। इसके बाद में कृष्ण चले गए परिस्थिति ऐसी दिखाई अब कोई उपाय नहीं चले गए वहां। वहां जाने के बाद में रम गए क्रमश उनकी शादियां हुई जाम्बाकू जी से शादी हुई। इसके बाद में धीरे 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 8 महर्षियों के साथ में शादी हुई। इसके बाद एक ही साथ में 16,100 महर्षियों के साथ में शादी हुई। इसके बाद में बच्चे हुए एक एक कोट वर्ष तक बच्चे हुए बस एक एक बच्चे हुए एक एक वर्ष में तो ये 10 वर्ष ऐसे निकल गए इधर का निकल गया। छोटे से कृष्ण जब 70-75 वर्ष के लिए हुए तो सूर्य ग्रहण में सोच रहे हैं कि कैसे गोपियों से उनको सुयोग देना चाहिए। इसलिए कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए गए उसमें पूर्ण ग्रास सूर्य ग्रहण कर रहा है। इसलिए वहां पर गए कहां तटस्थ भूमि तटस्थ माने के बीच जैसे हम उपमा देते हैं जैसे किसी को लड़की बिछानी है विवाह के लिए तो हम कहेंगे जैसे लड़की को मेरे घर में ले आओ यहाँ पर हम देखेंगे हमारे घर वाले देखेंगे उसका विवाह ठीक करेंगे तो पसंद आ जाएगा तो कहेंगे तो लड़की वाला राजी होगा कि नहीं अरे यहाँ नहीं। जन्मभूमि में कृष्ण का जो मंदिर है ना वहाँ पर ले आना गौड़ीय मठ में ले आना वहाँ अग्रवाल धर्मशाला है वहाँ तुम्हारे घर में भी नहीं और हमारे घर में भी बीच वाले जगह वहां लज्जा की कोई बात नहीं रहेगी वहां पर आ जाए। तो ये कुरुक्षेत्र न तो ऐश्वर्य की भूमि है न माधुर की भूमि कुछ भी नहीं साधारण सा भूमि है। इसलिए गोपियां यहां से डोंगरू की दूरी ठीक मथुरा में नहीं आई वहां पर जा रही है वहां से दूर है कुरुक्षेत्र वहां चली गई किंतु यहां नहीं आई और कुरुक्षेत्र जितना दूर है उससे थोड़ी दूर हो सकता है कि दूर द्वारका हो और द्वारका भी नहीं गई किंतु कुरुक्षेत्र में गई सभी नंद बाबा सब क्यों इसलिए कि तपस्या कृष्ण वहां पर आ सकते हैं यही
ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों वहां पर मिल सकता
है, इसलिए वहां पर
दोनों का मिलन था। गोपियां भी यहां से गई हैं, कृष्ण से वहां पर मिलन था। कृष्ण ने इनको समझाया ज्ञान की बातें, जो कि उद्धव के द्वारा या बलदेव के द्वारा जो समझाया, और जब ज्ञान की बातें कहीं तब ये गोपियां कुछ रुष्ट हो गई, और रुष्ट होकर के उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, आहुष्य से नंद नाम पदारण योगेश्वर कम अबाध बोधई संसार कुछ पति तो करणावलंबम देहम युषाम मन सूर्या। गोपियों ने कुछ ऐसे भाव भंगने से कहा कि कृष्ण ही समझे और कोई न समझे। आहुष के माने क्या, कुछ रुष्ट होकर, कुछ मान भरे होकर, कुछ दो भाषा में, दो भाषा होती है, ऐसा भी अर्थ लगे वैसा, जैसे कि कोई हमसे, कोई व्यक्ति यहां से चला है, कुछ बात हो गई, वाद विवाद हो गया, वो चला गया, फिर थोड़े दिनों के बाद में आया, हमने कहा कि आप क्यों आए, आपने आने का कष्ट क्यों किया, मतलब क्या? कोई प्रिय व्यक्ति हमारा है, हम चाहते थे, हम रोज में सोचता था कि उसको बुला लाऊं या मैं जाऊं उसे देख कर, मैं खुद उससे मिलने के लिए उत्सुक हूं, किंतु मैं नहीं गया किसी कारण से, वो व्यक्ति खुद ही आ गया, मैं उसे मिलना चाहता था, किंतु जब वो आया तो हम कहते हैं जैसे आपने क्यों तस्करी फरमाया, आप क्यों यहां पर है, इसका मतलब क्या
है, और जुम्मन आना चाहिए था
ऊपर से लोग समझे ये तुम बताना, किंतु भीतर से इसका अर्थ समझे। इसलिए गोपियां कह रही हैं आहुष्य, आहुष में जरा थोड़ा सा तिरछे नैनों से कृष्ण की तरफ में बंकिम नैनों को देकर के बहुत सुंदर ज्ञान सुना है, हम आपकी जन्म जन्मांतरों की ऋण, भला ऐसा ध्यान का उपदेश देने वाला सूर्य के समान, भास्कर के समान, जिनके उपदेश की प्रखर किरणें हैं, ऐसा संसार में मिलना, गुरु मिलना हे प्रखर उपदेश वाले गुरु, गुरु महाराज आपको कोटि कोटि बार नमस्कार करें, और ऐसे ज्ञान से हम आप कृतार्थ हो गए, हमको ऐसा ज्ञान देने वाला कोई। मैंने ये थोड़ी से भावना करे सर, कुछ रुष्ट होकर के ये कर, जैसे अर्जुन गीता का सब उपदेश सुनने के बाद में कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्यमान एकम शरणम व्रज अन्त्वां सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि। कृष्ण ने कहा देखो मैं तुमको एक लाइन में सारे गीता का और समस्त शास्त्रों का उपदेश सुना रहा हूं, वेद वेदांत उपनिषद जितने भी हैं पुराण महाभारत इत्यादि सबका सार है गीता, किम अन्य शास्त्र, किम और शास्त्रों के विस्तार से क्या हुआ, इसमें समस्त शास्त्रों का सार गीता है, ये गाय के समान है और दोहन करने वाले कौन है, गोपाल नंदन दुग्ध भोक्ता और सुधीर भोक्ता, बछड़े को दिखला करके दूध किसके लिए, साधारण लोगों के लिए। तब अन्य किन शास्त्र विस्तार और शास्त्रों के विस्तार से लाभ किया, कोई जरूरत नहीं है, बस गीता से सुनने से हो जाए, और ऐसे गीता का शास्त्र कृष्ण कहते हैं मैं तुमको बतला रहा हूं दो शब्दों में, क्या सब धर्मान पर सब धर्मों को वर्णाश्रम धर्म इत्यादि को छोड़ कर दी, बस हमारी शरण ले लो बस, और मैं तुम्हें इससे जब भी कोई कुछ पाप हुआ सब धर्मों को छोड़ने से तो मैं तुमको इससे छुटकारा दूं, अर्जुन के बाण वाह कथा ऐसा उपदेश तुमने सुनाया जो आज तक कभी किसी को मालूम ही नहीं था। मतलब क्या थर्ड क्लास का उपदेश सिखलाया, एमए पीएचडी डीलिट पास कर लिया, उसको कहा जैसे कौन उठो ऐसे कौ, उसको कब की शिक्षा दे जो सबसे पहले कभी जन्म जन्मांतरों में पहले ये सब शिक्षा पा लिया, सब धर्मों को छोड़कर मैं तुम्हारा आज तक शरणागत नहीं हूं। इसका मतलब ये हुआ अब सब धर्मों को छोड़ करके अब पहली बार तुम हमारे शरणागत, मैं शरणागत हूं। शरणागत कौन है, शरणागत किसको कहते हैं? इस जगत में सबसे पहले जिनको एबीसीडी का परमार्थ का ज्ञान नहीं है, जो ये नहीं जानते हैं कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, ऐसा व्यक्ति गुरु के यहां जब जाएगा अपने ज्ञान को सबको अलग अलग करके गुरु जी के चरणों में शरणागत होगा। मैं आपके शरण में, शरण में हूं का अर्थ क्या होता है? पहला अनुकूल्य संकल्प, अनुकूल हम ग्रहण करेंगे प्रतिकूल नहीं छुएंगे, उसको दूर रखें। और एकमात्र आप ही हमारे बालक है और रक्षक है, मैं आप ही को अपना शरण्य मानता हूं और तन मन वचन से उनके शरणागत होकर के उनके भावों को ग्रहण करके उनका भजन करना ही शरणागति है। अनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षस्य इति कृष्ण ही हमारे एकमात्र।